ओम शांति। 7 मिनट में 7 पॉइंट अव्यक्त मुरली विविजन। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हमें जो मुरली दी गई है प्यारे बाबा की, उसकी तारीख है 24 सितंबर 1992। इस मुरली में बाबा ने बहुत ही गहरी बातें कही है। मुरली का हेडिंग ही है सत्य और असत्य में विशेष अंतर। तो इस मुरली में बाबा ने पहले तो मुख्य मुरली चलाई, उसमें सत्य और असत्य में विशेष अंतर हम बच्चों के समक्ष स्पष्ट किया। उसके बाद 6 अलग अलग ग्रुप है, वो 6 अलग अलग ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की और उसमें अलग अलग बातें कही। तो पहला पॉइंट है सत्य और असत्य के बीच में विशेष अंतर। दूसरा पॉइंट है कि दुख की लहर से अगर हमें मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनना होगा। तीसरा पॉइंट है समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। चौथी पॉइंट, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। पांचवी पॉइंट है पूज्य वही है जिसकी आंख कहीं भी बाप के सिवाय कहीं भी न डूबे। छठी पॉइंट है संगठन में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा बनना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और सातवीं पॉइंट है कि हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप का दर्पण बने, यही ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ और शुभ आश है। तो इसमें पहला पॉइंट सत्य और असत्य में विशेष अंतर। तो बाबा ने कहा कि सत्य और असत्य में, असत्य की बातें पहचानने में बच्चे थोड़े गफलत करते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य में बहुत छोटी सूक्ष्म महीन रेखा होती है और उसको पहचानना बड़ा कठिन होता है। इसमें बाबा ने कहा हम मीठे बच्चों से कि जैसे अगर हम बुद्धि से सूक्ष्म में भी किसी व्यक्ति या प्रकृति के साधनों का, वस्तु का आधार लेते हैं, ठीक है, तो बाप से किनारा कर लेते हैं, मतलब बाप उसी क्षण दूर हो जाता है। ये ईश्वरीय मशीनरी ऑटोमेटिक काम करती है, मतलब उसमें समय नहीं लगता। और बाबा ने कहा कि अभी संसार में किसका राज्य है, असत्य का राज्य है, और असत्य का जो मुख्य है, अधिकारी है, वो कौन है, रावण। तो रावण का ही बोलबाला है, उसके जो भी मंत्री है, महामंत्री है, उसके जो भी जज है, वकील है, सभी सत्य को असत्य में, मतलब ये करने में, कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें सत्य को असत्य, असत्य को सत्य में, मतलब सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जैसे वो वकील होते हैं असत्य को भी सत्य सिद्ध कर देते हैं। बाबा ने कहा कि सत्य एक बाप है और असत्य के मार्ग पे चलने वाला थोड़ी देर के लिए मौज तो मना लेगा, उसमें अल्पकाल की जीत है लेकिन सदाकाल की हार है। और सदाकाल की जीत अगर हमें चाहिए तो हमें सत्य को जानना पड़ेगा, सत्य बाप से संबंध रखना पड़ेगा और सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान में रखो और इस विशेष अंतर को समझो। अभी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा सत्य के मार्ग पर चलने वालों को, लेकिन बाद में सदाकाल की मौज ही मौज है। फिर दूसरा पॉइंट है कि दुख की लहर से अगर हमें मुक्त बनना है तो क्या करना होगा, क्या बताया था, कर्मयोगी बनना पड़ेगा। तो इस ग्रुप में माताओं के साथ बाबा ने मुलाकात की है और कहा है कि हमें अगर दुख की लहर से मुक्त रहना है तो एक तो पहले न्यारा और प्यारा रहना पड़ेगा। जैसे बाबा क्या है, मतलब न्यारा है, इसलिए सर्व का प्यारा है। और माताओं में विशेष गुण क्या होते हैं, जल्दी ही दुख की लहर में, फीलिंग में आ जाते। तो बाबा ने यहां एक मुख्य बात कही कि आंखों से रोना एक अलग बात है, लेकिन अगर मन में भी संकल्प आए रोने की तो भी रोना, आंखों के रोना और वो रोना एक समान हो हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि दुख की लहर में लहर से अगर मुक्त रहना है तो हमेशा कैसे बनो, कर्मयोगी। मतलब हर कर्म में बाबा की याद रहे और स्मृति स्वरूप हम रहे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तभी हम बन पाएंगे जब हमेशा कर्मयोगी बनकर स्मृति स्वरूप रहकर हर कार्य करें। फिर तीसरी पॉइंट है, हर शक्ति को समय पे कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। बाबा ने कहा है कि बच्चों को बाप ने सभी शक्तियां प्रदान की है लेकिन आपने ली कितनी है, क्योंकि बाबा देते तो है लेकिन बच्चे लेने में गड़बड़ करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर आपने ली है तो उसको यूज वो होगी ही। अगर मान के चलिए कि किसी के पास शक्ति है और शक्तियां होने के बावजूद अगर वो यूज नहीं कर रहा है तो बाबा कहते कि शक्तियों का होना और न होना एक ही बात है, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो हर शक्ति को कार्य में लगाओ, जब जब हम शक्ति को कार्य में लगाएंगे तब तब और वो ज्यादा फलीभूत होगी और ज्यादा उसमें बल भरेगा और बाबा भी हमें क्या करेगा, कदम कदम पर हर शक्ति को कैसे यूज करना है इसका हमें क्या करेगा, बाबा हमें टचिंग देगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है अगला कि अगर मेरे को तेरे में बदलना ही क्या है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे हर समय क्या कहते रहते हैं, मेरा मेरा मेरा, बाबा कहते हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जो कुछ भी बाबा ने दिया हुआ है किसका है, किसने दिया है, स्वयं प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, उसको क्या कर दो, तेरे में परिवर्तन कर दो। अगर मेरे को तेरे में परिवर्तन नहीं करते हो और मेरे मतलब मेरे तेरे में मेरा मिक्स करते हो तो ये मिक्स करना ही क्या है, मतलब मिक्स करना ही हर बार का ये खोना है और हम क्या करते हो कि वंचित रह जाते हो, जो भी परमात्मा प्राप्ति है उससे फिर वंचित रह जाते हो। उसके बाद की पॉइंट है कि पूज्य, पांचवी पॉइंट, पूज्य वही है जिसकी आंख एक बाप के सिवाय कहीं भी न डूबे। बाबा ने इसमें बहुत गहरी बातें कही है। बाबा ने कहा हुआ है कि आप पूज्य हो और पूज्य बनने वाले हो, पूज्य हो भी पूज्य बनने वाले भी हो, मतलब सभी कालों में आप पूज्य हो। तो जो पूज्य आत्माएं होती है, जिनकी पूजा होती है मंदिरों में, उनके आगे सभी झुकते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते, मतलब सारी चीजें उनके पीछे पीछे आएगी, हमें झुकने की आवश्यकता नहीं। नम्रता होना एक अलग बात है लेकिन बाबा ने कहा कि आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने सारा संसार झुकेगा लेकिन वो कब हो सकता है, जब हम जब पूज्य स्वरूप में हम स्थित रहेंगे। और दूसरी बात बाबा ने कहा है कि देखिए संसार में क्या करते हैं, 56 भोगों का भोग लगाते हैं, देवी देवताओं के सामने भोग लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें आग डूबती है क्या देवी देवताओं की, नहीं, फिर भी विधिवत सारी चीजें होती है क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या है, आग डूबी हुई। ऐसी ही एक परमात्मा में आग अगर डूबी हुई आपकी, हम अगर खोए हुए परमात्मा की याद में, बस एक ही संसार है हमारा बाबा, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हमारे पीछे पीछे भागेगी, हमें चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि संगठन में रहते हुए भी क्या करना है, न्यारा और प्यारा रहना है, यही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा कैसा रहा, न्यारा और प्यारा। बाबा ने शिव बाबा का उदाहरण दिया कि सबसे बड़ा परिवार किसका है, बाबा का है, फिर भी वो कैसा रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही संगठन में रहो, जैसे अकेले अगर हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संगठन में रहते अगर हम निर्विघ्न हैं और सबके साथ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे हैं तो हम ब्रह्मा बाप समान हैं और शिव बाबा को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फिर आखिरी पॉइंट है कि ब्रह्मा, हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप का दर्पण बने, यही ब्रह्मा बाप की श्रेष्ठ आश है। बाबा ने कहा हुआ है, शायद उस ग्रुप में बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमें किसका चित्र दिखता है, हमारी प्रतिमा दिखती है, तो उसी प्रकार बाबा ने कहा कि उसमें कौन दिखे, ब्रह्मा बाप, मतलब हर कदम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और बाबा ने कहा कि मधुबन की कितनी महिमा है, मधुबन की महिमा मतलब यहां की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। तो बाबा ने कहा है कि मधुबन निवासी जैसे ब्रह्मा बाप समान, मतलब उन सारे कर्म जो हो ब्रह्मा बाप के समान हो, ऐसा स्पष्ट दर्पण बने, ये बाबा ने कहा हुआ है? अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज की जो मुरली का डेट है 18 जनवरी 1994 की, तो बाबा ने इस मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। तो पहला पॉइंट है स्नेह की शक्ति। तो बाबा कहते हैं कि जो स्नेही आत्मा है, परमात्मा स्नेह में खोए हुए हैं, उसके अंदर 9 बातें होगी। तो 9 बातें हैं। पहली बातें हैं, स्नेही आत्मा जो होती है वो देह और देह की दुनिया को एक सेकंड में भुला देती है, स्नेह में इतनी शक्ति है। दूसरी पॉइंट है, स्नेही आत्मा जो होगी वो मेहनत मुक्त होगी। मेहनत मुक्त होने के कारण मोहब्बत के में झूलते रहेगी, मेहनत मनोरंजन का खेल लगेगा। तीसरा पॉइंट है, असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है, स्नेह की शक्ति परमात्मा प्यार की छत्र छाया है, अर्थात भगवान की दुआओं का हाथ सदा अपने साथ अनुभव करते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण कराती है। स्नेह की शक्ति बाप समान सहज बनाती है। स्नेह की शक्ति, तो ये सब सारी बातें, तो स्नेह की बातें बाबा ने कही, तो स्नेह में इतनी शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, स्नेह ने ही नया जन्म दिया है। तो बाबा ने कहा इसमें हम अनेक आत्माएं कड़े कड़े बंधनों में फंसे थे, मेहनत करते थे, तो बाबा ने इन सब मेहनत को छुड़ाया और मेहनत से छुड़ाकर ही ऐसा स्नेह दिया है जिससे हमें एक नया जीवन मिला। तो बाबा ने कहा अगर स्नेह ना होता ब्राह्मण जीवन में तो ये नया जीवन भी नहीं होता। तो स्नेह है इसलिए ब्राह्मण जीवन है, अगर स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं होता। तो बाबा भी कहते जब भी मेहनत अनुभव होता है तो स्नेह विस्मृति हो जाती, याद नहीं रहता हमें स्नेह भगवान के साथ का, इसलिए हमें मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा वो बचपन के दिन याद करो, जब हम पहले पहले ज्ञान में आए थे तो स्नेह के कारण भगवान के साथ सहज ही हमारा योग लग सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, परमात्मा प्यार के हीरे मोती। बाबा ने अमृत वेले चक्कर लगाया तो क्योंकि अव्यक्त दिवस चल रहा है, तो बाबा ने हर एक के जाके देखा तो सभी आत्माएं स्नेह में खोए हुए थे। स्नेह इतना था कि सभी स्नेह में बाप दादाओं को याद कर रहे थे, और स्नेह के कारण बाबा ने कहा सभी को भविष्य में स्थूल हीरे मोती से सजे सजाए रहेंगे, लेकिन ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अमूल्य हैं, केवल इसी जन्म में ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो इस हीरे मोती से संपन्न रहते हैं वही आत्मा ही दूसरों को दे सकते हैं। और बाबा ने कहा कि थोड़े से प्यार से थोड़े प्यार के अनुभव होते हैं तो इससे खुश नहीं हो जाना है, इससे अपने आप को संपन्न बनाना है। जब हम संपन्न बनेंगे तभी हम दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ी खुशी मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें थोड़े से खुश नहीं हो जाना है। चौथा पॉइंट है, स्नेह का रिटर्न सदा स्नेही भाव। तो बाबा ने कहा इसमें आत्माएं जो है बहुत मेहनत करती है और मेहनत करते करते थक गई है, और जब भी थक जाते हैं तो बाबा ने यहाँ पे बच्चे का उदाहरण दिया, जब बच्चे थक जाते हैं खेलते खेलते या कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो कहाँ चले जाते हैं, माँ की गोद में। तो बाबा ने भी कहा अगर जीवन में बहुत थकावट हो रही चलते चलते ब्राह्मण जीवन में तो बचपन के दिन याद करो और माँ बाप के गोद में आ जाओ, तो फिर से माया की छाया से हम बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो भगवान का प्यार है उसे फिर से अनुभव करो जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, तो माया की छाया से हम बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि दादियों से मुलाकात की है, तो इसमें बाबा ने कहा कि कौन सा दिन याद आ रहा है आज का दिन, तो खासकर बाबा ने 18 जनवरी के दिन जब बाबा अवक्त हुए थे तो दादी प्रकाशमणि को जो शक्ति वील किए थे तो उसको बाबा ने फिर से याद दिलाया कि हाथ में हाथ वो विल पावर याद आ रहा है। तो फिर बाबा ने कहा ये विल पावर ही सारा कार्य करा रहा है। ब्रह्मा का कर्तव्य कब शुरू हुआ, तो बाबा ने कहा जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश किया तभी ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। ब्रह्मा कब बना तो बाबा ने उसका भी बताया कि जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हुए तब ब्रह्मा बना। तो इस तरह से बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के कारण ही ईश्वरीय कार्य तीव्र गति से सेवा जो होती है तीव्र गति से चला है। और बाबा ने कहा जो अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्मा है उसका भी अपना सौभाग्य है क्योंकि उसे भी फास्ट पुरुषार्थ करने का भाग्य मिला है। तो बाबा ने इसमें इस तरह से कहा कि फास्ट गति से पुरुषार्थ कर सकते क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। और बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा न्यारे और प्यारे रहे क्योंकि बाबा का जीवन सभी ने देखा है जो भी दादी थे, इसलिए न्यारा और प्यारा बन के रहना। फिर छठा पॉइंट है वरदान। बाबा ने कहा जो वरदान बाबा ने दिया है उसे यूज करो, केवल सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं रखो। बाबा ने इसमें उदाहरण दिया कोई अमूल्य चीज होती है तो उसे लॉकर में बंद करके रखते हैं और उसे सोच सोच कर खुश होते हैं कि हमारे पास अमूल्य चीज है, लेकिन बाबा ने कहा जो भी वरदान मिले हैं उसे प्रैक्टिकल कार्य में लाओ और उसे यूज करो तो इस वरदान से हम भरपूर रहेंगे। नहीं तो क्या करते हैं? हम सुनने सुनाने तक बुद्धि के तक ही सीमित रखते हैं बाबा ने कहा, तो ये वरदान फलीभूत नहीं होता। जब तक उसे हम कार्य में नहीं लाते तो जैसे का तैसे। जब और बाबा ने इसमें उदाहरण दिया जो चीज स्थूल चीज बांटने से कम होता है लेकिन वरदान जो बाबा बांटते हैं उसको कार्य में लगाने से और ही बढ़ता है। तो बाबा ने इसमें खास कहा कि जो बाबा वरदान देते उसे केवल सीमित नहीं रखना है बुद्धि तक, उसे यूज करना है प्रैक्टिकल कार्य में हम कहाँ यूज कर सकते हैं। और सातवां पॉइंट है तो ब्राह्मणों से बाबा ने मुलाकात की, तो खास उसमें पांडवों से पूछा है बाबा ने क्या हाल है। पांडव सेना तैयार है, शक्ति सेना तैयार है, एक सेकंड में जो ऑर्डर मिले वो पूरा कर सकते हैं, तो बाबा ने इस तरह से पूछे। और स्नेह का सबसे बड़ा उदाहरण यज्ञ में अगर हम देखा जाए तो आदि रत्न बुक में रमेश भाई और जयंती दीदी का है। जब रमेश भाई जी बाबा के साथ हमेशा रहते थे, मुंबई में भी जाते थे, तो रमेश भाई पांडव भवन आके बाबा को छोड़ के वापस घर जा रहे थे। तो जाते समय उस समय रमेश भाई को ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं अपने को, इस तरह का था। ज्ञान क्या होता है उससे कुछ मतलब। तो जब जाते समय ब्रह्मा बाबा ने एक शब्द कहा कि बच्चे बाप को छोड़ के जा रहे हो, तो रमेश भाई ने कहा ये बात मुझे लगी और इसी बात को ही सुनकर मैं ज्ञान में आया। तो सच्चा जो स्नेह होता है वो परमात्मा के साथ हमें जोड़ता है और जो देही की स्नेह होता है, स्वार्थ भरा स्नेह होता है, वो वहीं तक सीमित होता है। और सच्चा स्नेह होगी तो आत्मा की उन्नति होती है और स्वार्थ वाले स्नेह होती है तो आत्मा डाउन होती जाती है। तो इससे हमें चेक करना है कि सच्चा स्नेह है तो स्वतः ही आत्मा ऊपर चढ़ेगी और स्वार्थ है तो आत्मा ऊपर नहीं चढ़ेगी। ऊपर चढ़ने का दिखते भले लेकिन धड़ाम से गिरते, लेकिन स्नेह सच्चा नहीं है। लेकिन उसी जयंती दीदी का भी यही उदाहरण है कि जयंती दीदी को भी मधुबन आई थी ऐसी क्या समर छुट्टी जो होती है उसमें, तो उसको भी ज्ञान से कोई, लेकिन भगवान के जो ब्रह्मा बाबा के ही बोलते हैं इसे बच्ची बाप को छोड़ के जा रही हो, तो इसी सेंटेंस को सुनकर ही जयंती दीदी ने ज्ञान में आया। तो स्नेह जो होती है वो आत्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो सच्चा स्नेह ही हमें भगवान के साथ जोड़ता है और स्वार्थ भरा स्नेह देहधारी के साथ जोड़ता है और देहधारी की गुलामी कराता है। शुभ संध्या।